ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। कोरोना वायरस का संक्रमण न होने देने के लिए सरकार ने सभी उपाय अपना रखे हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी द्वारा पार्टी अध्यक्षों का राजनीतिक प्रतिवेदन हुआ सर्वसम्मति से पारित। एमसीसी सहयोग के बारे में अध्ययन कर 10 दिनों में प्रतिवेदन पेश करने के लिए वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल के नेतृत्व में 3 सदस्यों के अध्ययन कार्यदल का हुआ गठन। और कोरोना वायरस के कारण चीन में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 300 से अधिक, चीन से बाहर फिलीपींस में भी एक की मौत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की दूसरी केंद्रीय कमेटी बैठक ने दोनों अध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव और महासचिव विष्णु पौडेल द्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदन एवं विधान संशोधन प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया है। बैठक में केंद्रीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का आज पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड और महासचिव विष्णु पौडेल के जवाब देने के बाद सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए थे। ये जानकारी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने दी। उन्होंने बताया कि संशोधित विधान में सृजित किए गए उपाध्यक्ष पद पर नेता वामदेव गौतम को नियुक्त करने, एमसीसी सहयोग के बारे में समग्र अध्ययन कर 10 दिनों के अंदर पार्टी सचिवालय में प्रतिवेदन पेश करने के लिए वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल के नेतृत्व में 3 सदस्यों का अध्ययन कार्यदल गठन करने लगा निर्णय बैठक ने किए। इसके अलावा बैठक ने 15 दिनों के अंदर पार्टी एकीकरण के बाकी काम पूरे कर अगले साल यानी 2077 के चैत में पार्टी का महाधिवेशन संपन्न करने लगा निर्णय भी किए। ये बात भी प्रवक्ता श्रेष्ठ ने बताई। प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने सभी उपाय अपना रखे हैं, इसलिए नेपालियों को डरने की जरूरत नहीं है। नेकपा की दूसरी केंद्रीय कमेटी की बैठक के समापन के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर अनावश्यक भ्रम से न डरने बल्कि इससे बचने के लिए एहतियात बरतने का सभी से आग्रह किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि चीन में मौजूद नेपाली सुरक्षित है और उन्हें नेपाल वापस लाने के लिए सरकार जरूरी तैयारी कर रही है। कोरोना वायरस का संक्रमण न होने देने के लिए विभिन्न अस्पतालों में उच्च सावधानी अपनाई जा रही है। इसी क्रम में चितवन के भरतपुर अस्पताल ने भी सर्दी खांसी और बुखार के मरीजों के लिए टिकट कटाने और स्वास्थ्य जांच के लिए अलग व्यवस्था की है। सुनसरी की रामधुनी नगरपालिका 2 में आज हायस और बस के टकराने से हुए हादसे में 5 व्यक्तियों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए। इस हादसे में हायस चालक धादिंग बैरेनी 3 के 28 वर्षीय दीपक खड़का, छापा भद्रपुर 8 के 75 वर्षीय हेमराज कोयराला और उनकी पत्नी 65 वर्षीय श्रीमती डोल माया की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में बुरी तरह घायल भक्तपुर की 17 वर्षीय गरिमा गौतम और छापा भद्रपुर के 45 वर्षीय टंक प्रसाद काफले की बीपी कोयराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में इलाज के दौरान हुई मौत की जानकारी पुलिस ने दी। घायलों में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जबकि 10 लोगों की स्थिति सामान्य बताई गई है। दूसरी तरफ सरलाही में अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई और 1 व्यक्ति के घायल होने की जानकारी पुलिस ने दी है। सरलाही की बरहथवा नगरपालिका के हीरापुर से जिला मुख्यालय मलंगवा की तरफ जा रही मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त होने से मलंगवा 2 के 20 वर्षीय उपेन्द्र शाह सोनार और वहीं के 20 वर्षीय राजेंद्र यादव की मौत हो गई। इसी बीच सरलाही की लालबंदी नगरपालिका 16 भोरलेनी स्थित रानीगंज परवानीपुर के भीतरी सड़क खंड पर मोटरसाइकिल की टक्कर से पैदल यात्री 70 वर्षीय जोग कुमारी थापा की मौत हो गई। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग तीसरे संशोधन विधेयक 2076 पर विचार करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। बैठक में प्रधानमंत्री की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री भानुभक्त ढकाल ने प्रस्ताव पेश किया था। इस दौरान उन्होंने बताया कि सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के 3 महीने के अंदर संपत्ति विवरण पेश करने का कानूनी प्रावधान है, लेकिन संपत्ति विवरण सार्वजनिक करने या न करने के विषय में फिलहाल बहस जारी ही है। वहीं प्रस्ताव में उल्लिखित कुछ विषयों की सांसद राधेश्याम अधिकारी, प्रकाश पंत, जितेंद्र नारायण देव, ठगेंद्र प्रकाश पुरी लगायत ने आलोचना की थी। उन विषयों में मंत्रिपरिषद के निर्णयों में भ्रष्टाचार होने पर भी आयोग उस पर कोई कदम नहीं उठा सकता और सार्वजनिक पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध 5 साल पहले का मुद्दा नहीं उठाया जा सकता जैसे विषय शामिल हैं। बैठक में सांसदों ने कोरोना वायरस लगायत समसामयिक विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया था। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ने संसद की गरिमा को उच्च रखने के लिए ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य संपादन करने की प्रतिबद्धता जताई। अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के सदस्य सापकोटा के सभामुख पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद समिति द्वारा आज आयोजित विदाई कार्यक्रम में सभामुख सापकोटा ने कहा कि लोकतंत्र के विकास, विस्तार और सुदृढ़ीकरण में दृढ़तापूर्वक लगना होगा। साथ ही उन्होंने देशभक्ति और सदाचार के लिए किसी के साथ समझौता न करने की प्रतिबद्धता भी जताई। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल ने कहा कि नेपाली भाषा को कमजोर बनाने के हिसाब से अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालय काठमांडू के 74वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मंत्री पोखरेल ने कहा कि दक्षिण एशिया की पुरानी भाषा के रूप में रही नेपाली भाषा को मजबूत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। सप्तरी की सुरंगा नगरपालिका 7 हरिपुर स्थित सरस्वती पूजा का प्रसाद खाने से राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय के करीब 70 विद्यार्थी और अभिभावक बीमार हो गए। सरस्वती पूजा का प्रसाद खाने से कल शाम से विद्यार्थियों तथा अभिभावकों के बीमार होने की जानकारी नगरपालिका प्रमुख मुक्तिनाथ चौधरी ने दी। प्रसाद खाने से फूड प्वाइजनिंग के कारण आज सुबह से बीमार होने वालों की संख्या बढ़ने की जानकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिहरपुर ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस की वजह से चीन के बाहर किसी मरीज की मौत का पहला मामला सामने आया है। ये मौत फिलीपींस में हुई है। मरीज की उम्र 44 साल बताई गई है, जो मूल रूप से वुहान का ही रहने वाला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक ये व्यक्ति फिलीपींस आने से पहले ही कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका था। चीन में कोरोना वायरस के कारण अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 1400 से अधिक लोग इससे संक्रमित हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने चीन से अपने यहां आने वाले लोगों पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस के मामले पूरी दुनिया में पाए गए हैं, जिसमें सार्स महामारी वाले लक्षण हैं। ये महामारी साल 2003 में 2 दर्जन से अधिक देशों में फैली थी। हालांकि इस नए वायरस के कारण होने वाली मौतों की दर बहुत अधिक नहीं है। वुहान से फिलीपींस यात्रा करने वाला शख्स हांगकांग के रास्ते वहां पहुंचा था। उसके साथ 38 वर्षीय चीनी महिला भी थी। फिलीपींस के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले सप्ताह इस महिला के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि की है। अधिकारियों का कहना है कि पुरुष को राजधानी मनीला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो गंभीर रूप से न्यूमोनिया की चपेट में था। फिलीपींस में WHO के प्रतिनिधि रविन्द्र अबेया सिंघे ने लोगों से संयमित रहने की अपील की है। फिलीपींस ने चीन से आने वाले सभी विदेशियों पर रोक लगा दी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। कोरोना वायरस का संक्रमण न होने देने के लिए सरकार ने सभी उपाय अपना रखे हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी द्वारा पार्टी अध्यक्षों का राजनीतिक प्रतिवेदन हुआ सर्वसम्मति से पारित। एमसीसी सहयोग के बारे में अध्ययन कर 10 दिनों में प्रतिवेदन पेश करने के लिए वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल के नेतृत्व में 3 सदस्यों के अध्ययन कार्यदल का हुआ गठन। और कोरोना वायरस के कारण चीन में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 300 से अधिक, चीन से बाहर फिलीपींस में भी एक की मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।